There's a faith that is produced by man and there's a faith that comes from God.
Ek vishwas hota hai jo parmeshwar ke dwara kiya jata hai utpann aur ek vishwas hota hai jo manush ke dwara utpann kiya jata hai.
Many receive the word with joy.
Bahut sare log vachan ko anand ke sath grahan karte hain.
But because there's no firm root, they don't grow up and bear fruit.
Lekin agar mazboot jad nahi hoti to wo log phal nahi laate aur badh nahi paate hain.
Many people can say they believe.
Bahut sare log kehte hain ki wo vishwas karte hain, wo baptism lete hain.
They join the church. They understand the truth. They walk for a while. They even preach the gospel. They even perform miracles. They even cast out demons. But what does Jesus say?
In Mark
chapter 7, many will say to me in that day, Lord, Lord. Did we not preach in your name? Did we not cast out demons in your name?
क्या मैंने आपके नाम से आशक्रम नहीं किए?
But what will he say?
और फिर यीशु मसीह क्या कहेंगे?
He will not say this.
वो उनसे ये नहीं कहेंगे.
Well, I knew you once, but now I don't know you anymore.
तो यीशु मसीह उनसे ये नहीं कहेंगे, अरे एक समय तो था जब मैं तुम्हें जानता था, लेकिन अब मैं तुमको नहीं जानता
हूँ. What will he say to them?
लेकिन यीशु मसीह क्या कहेंगे उनसे उस समय?
Pay close attention to the words of Jesus.
ध्यान दीजिए बहुत ही नजदीकी से परमेश्वर के वचनों को.
What did he say?
यीशु मसीह ने क्या कहा? हाँ जी, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना. मत्ती उस सातवें अध्याय में मैंने तुझे कभी नहीं जाना.
Never knew you.
मत्ती 7:23 में मैंने तुमको कभी नहीं जाना.
Many will appear at the gate of heaven.
बहुत सारे लोग स्वर्ग के दरवाजे के पास तो आएंगे जरूर, और फिर उस दरवाजे को खटखटाएंगे.
The door will be open.
और दरवाजा खोलेगा.
Who are you?
और फिर वहां से अंदर से आवाज आएगी, तुम कौन हो?
Lord, I'm a preacher.
और लोग कहेंगे, प्रभु जी मैं तो प्रचारक हूं.
I've been baptized.
प्रभु जी मैंने लोगों को बपतिस्मा दिया था.
I preached the gospel in your name.
मैंने आपके नाम से सुसमाचार प्रचार किया.
I cast out demons in your name.
मैंने दुष्ट आत्माओं को आपके नाम से निकाला.
I performed many miracles in your name.
मैंने आपके नाम से बड़े बड़े अद्भुत काम किए.
I healed the sick in your name.
और मैंने बीमारों को चंगा किया आपके नाम से.
And what will he say to them?
और फिर यीशु मसीह क्या कहेंगे उनसे?
I never knew you.
मैं तुम्हें कभी नहीं जानता.
Listen carefully.
ध्यान से इस बात को.
It takes a long time, sometime, to determine who is a true Christian.
और कभी-कभी बड़ा समय लगता है ये जानने के लिए कि कौन है सच्चा विश्वासी.
And when you preach the truth,
और जब आप सत्य का प्रचार करते हैं,
you must be very clear and very direct.
तो आपको बड़ा स्पष्ट होना चाहिए और बिल्कुल सीधे तौर पे लोगों से बात करना चाहिए.
Heart.
हम लोग लोगों के हृदयों को नहीं खोल सकते.
You cannot make him repent.
हम लोगों को पछताव नहीं करवा सकते.
You cannot make him believe.
हम लोगों को विश्वास करवा
नहीं
सकते.
Only God can open the heart.
केवल परमेश्वर ही विश्वास करवा सकता है.
Only God
can
give him the gift of repentance.
केवल परमेश्वर ही लोगों को पछताव का दान दे सकता है.
Only God can give him the gift of faith.
केवल परमेश्वर ही लोगों को विश्वास का दान दे सकता है.
True repentance.
सच्चा पछताव.
Is a turning to God.
ये परमेश्वर की ओर मुड़ना है.
Not a turning back away from God.
और परमेश्वर की तरफ से मुड़ जाना नहीं है.
True faith.
सच्चा विश्वास.
And the Lord Jesus Christ.
यीशु मसीह में.
Not just Jesus.
ना सिर्फ यीशु मसीह में.
Not just Jesus Christ.
ना सिर्फ यीशु मसीह में.
But Paul said the Lord Jesus Christ.
लेकिन पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह.
And what does Lord mean?
और प्रभु का मतलब क्या हुआ?
Eternal deity.
वो हमेशा हमेशा से जो
ईश्वर है. And sovereign authority.
और सार्वभौमिक अधिकार रखने वाला.
What does Jesus mean?
यीशु का मतलब क्या हुआ?
Savior, deliverer.
और बचाने वाला, छुड़ाने वाला.
You shall call him His name Jesus, he shall save his people from their sin.
और उसको नाम यीशु रखना क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा.
What does Christ mean?
मसीह का मतलब क्या हुआ?
The Messiah, the anointed one.
मसीह क्या हुआ? जिसके जिसको अभिषेक किया गया.
And remember in the Old Testament there were three particular people that were anointed with the holy oil.
आपको याद है पुराने नियम में तीन विशेष तरह के लोग होते थे जिनका पवित्र तेल से अभिषेक किया था. तीन लोग. कौन तीन लोग थे पुराने नियम में?
And you remember who they were.
क्या आपको याद है कौन वो लोग हुआ करते थे पुराने नियम में? तीन जन, अलग अलग जन.
प्रॉफिट,
नबी,
प्रीस्ट,
याजक,
किंग,
राजा.
They were anointed for a peculiar ministry.
और इन तीन विभिन्न जनों को विशेष सेवकाई के लिए अभिषेक किया जाता था पुराने नियम में.
Jesus is the anointed one.
यीशु मसीह ही अभिषेक जन
है. He is the true prophet from God.
वो परमेश्वर की ओर से सच्चा नबी है, सच्चा भविष्यवक्ता है.
He speaks and brings to us the word of God.
वो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए परमेश्वर का वचन लेकर आता है.
He gives a proper interpretation of the law of God.
परमेश्वर के वचन का वो हमें सही अर्थ बताता है.
He is the great final high priest.
वो सबसे बड़ा और अंतिम महान महायाजक है.
He is the priest and the offering.
और वो ना सिर्फ याजक है लेकिन वो बलिदान भी स्वयं है.
And he offered himself without blemish to God.
उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने बिना दोष के चढ़ा दिया बलिदान के तौर पे.
He is a king.
और वो एक राजा भी है.
God has highly exalted him.
परमेश्वर ने उसको ऊंचे पे उठाया है.
And given him a name that is above every name.
और उसको एक ऐसा नाम दिया जो सारे नामों से बढ़कर है.
And what is that name?
और वो नाम क्या है?
It is Lord.
उसका नाम प्रभु है.
And that every tongue shall confess that Jesus is Lord.
और हर एक जीभ अंगीकार करेगी और कहेगी यीशु मसीह ही प्रभु है.
One day all men will confess that Jesus is Lord.
एक दिन सारे लोग कहेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है.
You can confess it now or you can confess it later.
या तो आप अभी अंगीकार कर लें इस बात को या फिर आप इस बात को बाद में अंगीकार करिएगा.
But all men will one day confess that Jesus is Lord.
लेकिन सारे लोग एक दिन अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है.
True faith,
सच्चा विश्वास,
and true repentance,
और सच्चा पश्चाताप,
are a gift of God.
ये परमेश्वर की ओर से दान है हमारे लिए.
And it produces a changed life.
और इनके द्वारा एक बदला हुआ जीवन उत्पन्न होता है.
Not temporarily,
खाली अस्थायी रूप से नहीं, कुछ समय के लिए, लेकिन हमेशा के लिए स्थायी रूप से.
Right now,
इस समय,
today,
आज के दिन,
there are many preachers in hell.
बहुत सारे प्रचारक लोग नरक में हैं.
They preached in Jesus' name.
क्योंकि उन लोग ने यीशु मसीह के नाम में प्रचार किया.
They cast out demons in Jesus' name.
यीशु मसीह के नाम में उन्होंने दुष्ट आत्माएं निकाली.
They performed miracles in Jesus' name.
और यीशु मसीह के नाम में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए. और यीशु मसीह के नाम में उन्होंने बीमारों को चंगा भी किया.
Jesus said, "I never knew you."
लेकिन इसके बाद भी यीशु मसीह उनसे ये कहता है कि मैं तो तुमको कभी जानता भी नहीं था.
So two questions.
तो दो प्रश्न हैं मेरे लिए आपके
सामने. Have you truly repented and believed?
क्या आपने वास्तव में पश्चाताप किया और विश्वास किया?
And are you clearly preaching to people what it means to repent and believe?
और क्या ना सिर्फ आपने स्वयं विश्वास किया, पश्चाताप किया, लेकिन आप लोगों को स्पष्टता के साथ बता रहे हैं पश्चाताप और विश्वास का मतलब क्या है?
When God opens the heart,
क्योंकि जब परमेश्वर लोगों के हृदयों को खोलेगा,
He gives men two great gifts.
जब जब परमेश्वर लोगों के हृदयों को खोलता है, परमेश्वर उनको दो महान दान देता है.
The gift of faith,
पहला दान है विश्वास का दान,
and the gift of repentance,
और दूसरा वरदान है पश्चाताप का वरदान.
True faith,
सच्चा विश्वास,
true repentance,
सच्चा पश्चाताप,
comes from God,
परमेश्वर की ओर से आता है.
It is focused on Jesus Christ,
इसका ध्यान यीशु मसीह की ओर होता
है. It produces a new creation,
और इसे नई सृष्टि उत्पन्न होती है.
And they persevere until the end,
और फिर ये लोग अंत तक बने रहते हैं.
That is a work of God.
ये है परमेश्वर का काम.
And when you preach to men,
और जब आप लोगों को प्रचार करें,
you must be very clear,
तो आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए.
Then our last question,
और मेरा आखिरी प्रश्न,
what was it?
क्या था वो आखिरी प्रश्न?
Could you tell me 3 to 5 differences between justification and sanctification?
क्या आप हमें 3 से 5 फर्क बता सकते हैं धर्मी ठहराए जाने में और पवित्रीकरण अथवा शुद्धिकरण में?
Very important distinction.
बहुत ही महत्वपूर्ण भिन्नता है इन दोनों के बीच में, धर्मी ठहराए जाना और पवित्रीकरण अर्थात शुद्धिकरण में क्या फर्क है?
नंबर वन,
पहली बात,
वेरी
गुड. Justification once for all, sanctification continuous, ongoing. बहुत बढ़िया सागर भैया. और कोई और?
What else?
और कोई बात? नहीं, पहले किसी और को मौका देते हैं. कोई और?
Justification is once for all.
धर्मी ठहराना एक बार के लिए है, हमेशा हमेशा के लिए.
Are all believers equally justified in the sight of God?
अच्छा, हमको ये बताइए, क्या सारे विश्वासी लोग परमेश्वर की निगाह में बराबरी से उनका धर्मी ठहराया जाना हो गया है? सारे विश्वासियों का बराबरी से एक तरह से एक मायने में धर्मी ठहराया जाना हो गया है?
Are all believers equally sanctified in the sight of God.
अच्छा दूसरा प्रश्न, तो क्या सारे विश्वासी लोग परमेश्वर की निगाह में एक ही मायने में एक ही तरह से उनका पवित्रीकरण हो गया है?
There are different stages of growth in the Christian life.
मसीह जीवन में अलग अलग चरण होते हैं वृद्धि के.
We are born again spiritually.
हम लोग आत्मिक तौर से हमारा नया जन्म होता है.
The Spirit of God gives us a new heart and a new nature.
परमेश्वर का आत्मा हमें नया हृदय देता है और नया स्वभाव देता है.
We're like little spiritual babies.
और अब हम लोग आत्मिक बच्चे नहीं होते हैं.
And we begin to grow.
और यद्यपि हम बच्चे होते हैं, फिर धीरे-धीरे बढ़ने लगते हैं हम लोग.
Progressive sanctification is the process of being more and more conformed to the life and love and character of Jesus Christ.
तो जो पवित्रीकरण या शुद्धिकरण है, जो धीरे-धीरे नियमित तौर से प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा हम परमेश्वर के चरित्र में गुण में बढ़ते चले जाते हैं, उसके समानता में चले जाते हैं.
Not just trying to imitate His life and the strength and power of our own.
और परमेश्वर के गुणों की हम नकल नहीं करते हैं, खाली अपने स्वयं की ताकत या सामर्थ्य में या अपनी इच्छा शक्ति में होकर
के. But by an inward principle of grace that has been implanted in our heart.
लेकिन हमारे हृदयों में भीतरी जो उस अनुग्रह के एक सिद्धांत जिसको रोप दिया गया, उसके द्वारा हम ऐसा काम करने पाते हैं.
If any man is in Christ, he is a new creature.
यदि कोई व्यक्ति मसीह में है, तो वो एक नई सृष्टि है.
All things pass away.
सारी बातें अब बीत गई, पुरानी बातें.
Slowly but surely become new.
और सब बातें अब नई होने लगती हैं धीरे-धीरे.
There be another difference between justification and sanctification.
और धर्मी ठहराए जाने में और पवित्रीकरण में कोई और फर्क बताइए हमको आप लोग. हाँ हाँ जा, हाँ जा, एक मिनट. हाँ अच्छा अच्छा ठीक है. Justification we can't do it on our own. Sanctification we do it on our own.
Justification is wholly and completely a work of God.
धर्मी ठहराए जाना संपूर्णता से पूरी तरह से परमेश्वर का काम है.
Sanctification is a work of man by the help and power of God.
पवित्रीकरण मनुष्य का काम है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ और सहायता से. बिना परमेश्वर की सामर्थ और सहायता के हम पवित्रीकरण भी नहीं कर सकते हैं.
You understand what we're saying?
तो फर्क समझ रहे हैं आप दोनों में? फर्क समझ रहे हैं? तो धर्मी ठहराए जाना में संपूर्णता से पूरी तरह से परमेश्वर काम है, इसमें हमारा कुछ हाथ नहीं है. पवित्रीकरण में हम लोग करते हैं, लेकिन परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की मदद से, उसकी सामर्थ से. अगर उसकी सामर्थ उसकी सहायता नहीं हुई, तो हम पवित्र भी नहीं बन पाएंगे, वो भी नहीं हो सकता हमसे अपने आप.
In justification, God completely declares man.
धर्मी ठहराए जाने में परमेश्वर संपूर्णता से पूरी तरह से मनुष्य को घोषित करता है.
Sanctification, God slowly begins to change and transform man.
पवित्रीकरण में परमेश्वर धीरे धीरे मनुष्य को बदलने लगता है, परिवर्तन करने लगता है.
Give me another one.
एक और बताइए विक्रम भाई. हाँ जी. Okay, ठीक है. Declaration and work.
The what?
He just said it.
Okay.
He just said it. एक ही जैसे. वेरी गुड, वेरी गुड. कोई और? ओके, पोजिशनल का मतलब बताइए हमको. ओके ठीक है. अच्छा, और सैंक्टिफिकेशन?
Justification gives us a new position. Sanctification gives us a new condition. You got the words for that?
धर्मी ठहराए जाना हमारी एक नई स्थिति होती है. स्थिति होती है, एक नई स्थिति होती है. पवित्रीकरण and what is एक नई, हाँ ये तो एक ही चीज होगी.
This changes.
एक परिस्थिति है, नई परिस्थिति. हाँ जी.
This changes our legal status.
तो पहली स्थिति है, वो नई स्थिति हो गई, ये इसमें नई परिस्थिति है. ज्यादा
This changes our actual nature.
उसमें हमारी वैधानिक घोषणा हो रही है, इसमें हमारे what did you say the last
an actual nature.
वास्तविक अंदर से स्वभाव में बदलाव आ रहा है. लिख लो. वेल डन.
हम्म.
justification is done by representation. Sanctification is work, act.
How can we say that? Justification is through a what we'll call a legal representation.
धर्मी ठहराया जाना हमारे वैधानिक या कानूनी प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है. पोजीशन, दर्जा या दशा.
Sanctification is by actual transformation.
अवस्था. डिक्शनरी है मेरे पास. किंतु पवित्रीकरण हमारे वास्तविक परिवर्तन के द्वारा होता है. तो वहां पे कानूनी वैधानिक प्रतिनिधित्व धर्मी ठहराए जाने में, किंतु पवित्रीकरण में हमारी वास्तविक परिवर्तन के द्वारा होता है.
Another way the theologians say it is justification is you don't have a word, that's right. Imputation, legal transfer. Sanctification is by impartation.
Yeah.
Yeah. Okay. Anything else you can think of? Let me ask you this. Can our justification change?
क्या हमारी धर्मी ठहराए जाने की अवस्था बदल सकती है? हाँ जी. वेरी गुड.
इट्स अनचेंजिंग.
वो ना बदलने वाली अवस्था है.
इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्टिविटी और एक्शंस ऑफ मैन.
ये मनुष्य के कार्य, मनुष्य की क्रिया पर आधारित नहीं है.
आवर सैंक्टिफिकेशन इज इट अनचेंजिंग और चेंजिंग.
क्या हमारा पवित्रीकरण बदलने वाली स्थिति में होता है कि नहीं होता है?
It is subject to change.
वो बदलाव के अधीन होता है.
Any questions?
कोई प्रश्न?
Now we have looked at this before.
हमने इसको पहले भी देखा है इस बात को.
And we have looked at the verses that support these truths.
और हमने उन पदों को भी देखा है जो इन सत्यों को की बात को दर्शाती हैं.
It's important to you understand both the difference between and the relationship between these two truths.
बहुत जरूरी है कि आप इन दोनों सत्यों के बीच में इनके संबंध को देखें और फर्क को देखें.
Does our sanctification contribute to our justification?
क्या हमारे इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा. क्या हमारे पवित्रीकरण के द्वारा धर्मी ठहराए जाने पे कुछ फर्क पड़ता है? क्या हमारे पवित्रीकरण होने के पवित्रीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हमारे धर्मी ठहराए जाने की स्थिति में कुछ फर्क होता है?
If the more we are sanctified, does that mean the more we are justified?
क्या अगर हम और अधिक पवित्र हो जाएंगे तो क्या इसका यह मतलब है कि हम और अधिक धर्मी ठहरा दिए गए हैं?
We must clearly understand this.
हमें इस बात को बिल्कुल सही तरीके से स्पष्ट समझना है.
This has to do with forgiveness of sin.
धर्मी ठहराए जाने का पापों की क्षमा से लेना देना है.
This has to do with growth in righteousness.
और पवित्रीकरण का धार्मिकता में बढ़ने से लेना देना है.
This is a legal righteousness. This is a practical righteousness.
धर्मी ठहराए जाना वैधानिक धार्मिकता है. पवित्रीकरण व्यवहारिक धार्मिकता है.
Any questions or comments?
कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी करना है?
Now there are many other things that we could say about the distinction and difference between these two wonderful truths.
और हम लोग कई बातें कर सकते हैं इन दोनों के बीच में, इन दोनों सत्यों के बीच में, तथ्यों के बीच में.
But you need to make sure that people understand that nothing they can do, nothing they can obey, nothing they can work for in any way will justify them in the sight of God.
लेकिन आपको इस बात को समझना है कि ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा आप कुछ भी नहीं दे सकते हैं जिसके द्वारा आप परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए जाएंगे. ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते.
We're justified in the sight of God not by the works of the law.
हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए जाते हैं व्यवस्था के कामों के द्वारा नहीं.
We're justified in the sight of God by the hearing of faith in the Lord Jesus Christ.
हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए जाते हैं विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के वचन को सुनने के द्वारा.
Now there are two extremes in regards to an understanding of these truths.
और इन दोनों सत्यों को समझने के मामले में दो चरम स्थितियां होती हैं.
One is legalism.
एक होता है कानूनवाद.
It says you have to be practically righteous and obey the law in order to be justified.
तो कानूनवाद या व्यवस्थावाद ये कहता है कि तुम्हें बिल्कुल संपूर्णता से सिद्ध होना है तभी तुम धर्मी ठहराए जा सकते हो.
That was a big problem in the early church.
और ये आरंभिक कलीसिया में बहुत बड़ी समस्या थी.
Acts chapter 15.
प्रेरितों का उसके 15 अध्याय.
Certain men came down from James and Jerusalem and said, unless you are circumcised and obey the law of Moses, you cannot be saved.
कुछ लोग यरूशलेम से आए और उन्होंने कहा कि जब तक तुम लोहारा खतना नहीं होगा और व्यवस्था को पूरी तरह से पालन नहीं करोगे तब तक तुम धर्मी नहीं ठहराए जाओगे.
And this is one of the big problems that Paul faced.
और ये बहुत बड़ी समस्या थी जिसका सामना पॉलस ने किया था.
So a legalist says this.
और जो एक कानूनवाद का पालन करने के हाथ में यीशु मसीह
विश्वास. But you must be baptized.
लेकिन फिर तुम्हें बपतिस्मा लेना है.
You must obey.
और तुम्हें
पालन करना है. You must do good works.
तुम्हें अच्छे काम करना है.
And if you're not baptized.
और अगर तुम बपतिस्मा नहीं हो.
Or you don't obey.
और अगर तुम आगे पालन करते हो.
Or you don't do good works.
अगर तुम अच्छे काम नहीं करते
हो. You cannot be saved.
तो तुम बचा नहीं जा सकते.
Or they say this.
और या फिर वो लोग ये कहते
हैं. You're saved by faith.
तुम विश्वास द्वारा बचा.
But you keep your salvation by works.
लेकिन तुम अपने उद्धार को कामों के द्वारा बनाए रखते हो.
That is legalism as well.
तो ये भी कानूनवाद
है. You need to make sure people understand the grounds and the basis of our right standing with God.
और आपको ये ध्यान देना है कि आपके लोग समझते हैं कि क्या आधार है, किसके आधार पे हमें परमेश्वर की ओर से धार्मिकता प्राप्त होती है.
It is not our righteousness.
ये हमारी धार्मिकता नहीं है. ये मसीह की धार्मिकता.
It is not our obedience.
ये हमारी अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो वो हमें अपनी धार्मिकता दे देगा.
सो वन एक्सट्रीम इज लीगलिज्म.
तो एक चरम सीमा वो ये है व्यवस्थावाद
कानूनवाद. In order to gain or to maintain your salvation.
तुम्हें आज्ञा पालन करना है और कार्य करना है अपने उद्धार को बनाए रखने के लिए.
The other extreme is, you got a word for antinomianism. Against the law, whatever. Antinomianism.
दूसरा चरम जो स्थिति है वो ये है गैर व्यवस्थावाद.
What does that mean?
उसका मतलब क्या हो गया?
That means we are justified.
उसका ये मतलब है कि हम लोग धर्मी ठहरा दिए गए
हैं.
अब हमें मुफ्त में माफी मिल गई
है. We are loved by God.
हमें परमेश्वर प्रेम करता
All
है.
Our sins are pardoned.
हमारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं.
So we're free to live any way we want.
तो इसलिए अब हम मुक्त हैं. हम जैसे चाहें वैसे जिए.
And no matter how we live.
और चाहे जैसे भी हम जिएंगे.
He still loves us.
वो हमसे फिर भी प्रेम करता है.
Now listen carefully.
ध्यान से
no matter how we live.
हम चाहे जैसे
जिए. If we are a true child of God.
अगर हम परमेश्वर सच्चे संतान
हैं.
तो वो वास्तव में अभी भी प्रेम करता है.
And nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus.
और कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है.
But many, many professing Christians preach the doctrine of free grace.
लेकिन बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह को मानते हैं वो लोग मुफ्त अनुग्रह के सिद्धांत का प्रचार करते हैं.
And who's the biggest free grace preacher in this side of the world?
और मुफ्त अनुग्रह का सबसे बड़ा प्रचारक कौन है?
He is out of Singapore, and he's on TV in India. Mm-hmm. What's his name? No, that's America. Joel Osteen preaches a prosperity gospel, a positive thinking gospel. Who? Joseph Prince. He preaches free grace.
Yusuf Rajkumar.
And he preaches some things that are true.
वो अनुग्रह का प्रचार करता है, मुफ्त में अनुग्रह का प्रचार करता है, कुछ बातें जो प्रचार करता है वो सच प्रचार करता है।
You are forgiven.
तुम्हारे तुम्हें क्षमा मिल गई
है। Your sins are wiped away.
तुम्हारे पाप क्षमा हो गए।
God loves you.
परमेश्वर तुमसे प्रेम
करता है। Nothing will separate you from the love of God.
कोई भी चीज तुमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है।
Oh, even if you sin.
चाहे तुम पाप भी करो।
It doesn't change God.
परमेश्वर को बदल नहीं सकता तुम्हारे
पाप। He still loves you.
वो फिर भी तुमसे प्रेम करता है।
And he wants you to feel accepted in love.
वो चाहता है कि तुम स्वीकृत हो और परमेश्वर के प्रेम को अनुभव कर सको।
If you obey God, you are no better off.
अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा पालन करोगे तो तुम बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं हो।
If you disobey God, you're no worse off.
और अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं करोगे तब भी तुम खराब स्थिति में, चाहे आज्ञा पालन करो चाहे ना पालन करो कोई फर्क नहीं पड़ता।
So that is wrong teaching as well.
ये भी गलत शिक्षा है।
Paul says this in Ephesians 2:8 and 9.
और पौलुस इफिसियों 2 और 8 और 9 में कहता है,
By grace you are saved through faith and it's not of yourself.
परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा तुम बचाए गए, ये तुम्हारा काम नहीं।
It's a gift of God, not as a result of works.
ये परमेश्वर के दान है, ये हमारे कार्यों का परिणाम नहीं है।
So no man can boast in his own righteousness.
ताकि कोई व्यक्ति अपने अच्छे कामों में घमंड ना कर सके, गर्व ना कर सके।
What does the next verse say?
लेकिन फिर अगला पद क्या कहता वहां पे? अगला पद क्या कहता वहां पे? हाँ जी, कि किस लिए उसने हमको बचाया, अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ, किस लिए? अच्छे काम करने के लिए।
If you read 8 and 9 and forget and do not read verse 10, you may fall into the extreme of antinomianism.
तो अगर आप दूसरा अध्याय उसका 8 और 9 पद पढ़ें और फिर उसके बाद आगे ना पढ़ें तो फिर आप गैर व्यवस्थावाद के चरम स्थिति में पढ़ सकते हैं।
What does verse 10 say?
दसवां पद हमारे लिए क्या कहता है?
For we are his workmanship.
क्योंकि हम उसके हाथ की कारीगरी हैं।
Created in Christ Jesus unto good works which God prepared beforehand that we would walk in them.
मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सजे गए हैं जिनको परमेश्वर ने प्रारंभ से ही तैयार किया कि हम उन्हें करें।
And so if a man is truly converted,
यदि एक व्यक्ति वास्तव में उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसका नया जन्म हुआ,
if he truly repented,
अगर उसने वास्तव में क्षमा प्राप्त
किया, if he truly believed in Jesus Christ,
अगर वो वास्तव में यीशु में विश्वास
करता है,
तो उसको नया हृदय
मिलेगा,
नया मन मिलेगा,
he has a new nature,
नया स्वभाव मिलेगा,
he has a new purpose,
उसके पास एक नया उद्देश्य होगा।
A new creature.
और वो एक नई सृष्टि
होगी। Old things pass away.
पुरानी बातें बीत गईं।
All things become new.
और पुरानी बातें नई हो गईं।
God puts within him a heart and desire to obey.
परमेश्वर उसके अंदर एक हृदय डालता है और इच्छा डालता है कि वो आज्ञा पालन करे।
Our obedience does not save us.
हमारी आज्ञा पालन हमको नहीं बचाता है।
Our good works do not save us.
हमारे अच्छे कार्य हमको नहीं बचाते हैं।
Our own righteousness does not save us.
हमारी स्वयं की धार्मिकता हमको नहीं बचाती है।
Our ministry does not save us.
हमारी सेवकाई हमको नहीं बचाती है।
He saves us.
लेकिन वो हमको बचाता
है। But if he saves us,
क्योंकि अगर वो हमको
बचाता
है,
he gives us a new heart.
तो वो हमको एक नया हृदय भी देता है।
One is the root, the other is the fruit.
तो एक जड़ है तो दूसरा फल है।
One is the cause, the other is the result.
एक कारण है तो दूसरा उसका परिणाम है।
What is the root?
जड़ क्या है?
Saving faith.
बचाने वाला
विश्वास। What is the result?
परिणाम क्या है?
Obedient life.
आज्ञाकारिता जीवन।
What is the cause?
कारण क्या है?
The grace of God.
परमेश्वर का अनुग्रह।
What is the result?
और परिणाम क्या है?
Walking in righteousness.
धार्मिकता में चलना।
So if a man says this,
अगर एक व्यक्ति ये कहता है,
I believe in Jesus.
मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं।
I have been through the narrow gate.
और मैं उस पतले सकरे मार्ग से होकर जा चुका
हूं। Walking the broad way.
लेकिन अब वो चौड़े मार्ग पे चल रहा है।
What do we say about that man?
तो उस व्यक्ति के बारे में हम क्या कहेंगे?
He is deceived.
वो धोखे में
है। He has been misled.
उसको गलत राह
पे falsely converted.
वो झूठी तरह से उसका हृदय परिवर्तन हुआ।
He's been professing Christ.
वो यदि भी मुंह से तो अंगीकार करता है यीशु मसीह का।
But he has not possessed Christ.
लेकिन उसने यीशु मसीह को अपनाया नहीं।
And what is the narrow way?
और वो सकरा मार्ग क्या है?
It's the way of obedience.
और वो आज्ञाकारिता का मार्ग है।
पवित्रता का मार्ग। It's the way of good works.
और इसी वही मार्ग अच्छे कार्यों का।
I told you before.
मैंने आपको पहले बताया
है। Sometimes we walk slowly on the way.
कभी-कभी उस मार्ग पे हम धीरे-धीरे चलते हैं।
Sometimes we go 3 steps forward and 2 steps back.
कभी-कभी हम 3 कदम आगे बढ़ते हैं और 2 कदम पीछे आते हैं।
We limp along.
और कभी-कभी हम लंगड़ाते हुए चलते हैं।
Sometimes we fall out of the way.
कभी-कभी हम रास्ते से गिर भी जाते हैं।
But if we are a true child of God.
लेकिन अगर हम परमेश्वर की सच्ची संतान हैं।
Because he loves us.
क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है।
He will discipline us.
वो हमें
अनुशासित करेगा. He will pick us up. वो हमको उठाएगा. He will brush us off. वो हमको झाड़ेगा. He will forgive us of our sins. हमें पापों को क्षमा करेगा. He will put us back in the way. और हमें रास्ते में वापस डालेगा. And he will pull us. और हमें घसीटेगा. He will push us. हमें ढकेलेगा. He will carry us. हमें उठा के चलेगा. Sometimes he kicks us. और कभी-कभी हमें लात भी मारेगा. But because he loves us. लेकिन वो हमसे प्रेम करता है. He keeps us in the way. वो हमें अपने मार्ग में बनाए रखेगा. He that endures to the end will be saved. वो जो अंत तक बना रहेगा वो बचाया जाएगा. Not by their own strength. अपने स्वयं की सामर्थ्य के द्वारा. Not by their own power. अपने स्वयं की ताकत के द्वारा. By the grace of God. लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा. Working in his heart. उसके हृदय में जो काम करा परमेश्वर का सामर्थ्य. God has created good works beforehand that he should walk in them. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए आरंभ से ही अच्छे काम किए हैं जिन्हें हमें करना है. So we must understand the difference between justification and sanctification. इसलिए हमें धर्मी ठहराए जाने और पवित्रीकरण में फर्क को समझना है. Any question? कोई प्रश्न है आपके सामने धर्मी ठहराए जाने और पवित्रीकरण के संबंध में? So let me ask you another question. मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ. Can you earn your salvation? आप हमको बताइए क्या आप अपने उद्धार को कमा सकते हैं? Do your good works keep you in a state of salvation? अच्छा, अभी दूसरे प्रश्न होता है, क्या आपके अच्छे काम आपको उद्धार की अवस्था में बनाए रखते हैं? If you are truly saved, अगर आपका वास्तव में उद्धार हो गया, will you begin to produce good works? क्या अगर आपका वास्तव में उद्धार हो गया तो क्या आप अच्छे कामों को करने लगेंगे? Can a true Christian temporarily fall away? क्या एक सच्चा विश्वासी अस्थाई रूप से कुछ समय के लिए मार्ग से गिर सकता है? Can fall into sin? क्या एक सच्चा विश्वासी पाप कर सकता है? Can be like Peter and deny the Lord? क्या वो पतरस के समान होकर के यीशु मसीह का इनकार कर सकता है? Can be like David and fall into sin? और दाऊद के समान होकर के पाप में गिर सकता है? But listen carefully. लेकिन ध्यान से सुनिए. There's a difference between Peter and Judas. और यह ध्यान रखिएगा कि पतरस में और यहूदा स्कृति में फर्क है. Both of them denied the Lord. दोनों ने यीशु मसीह का इनकार किया था. Judas betrayed Christ. और यहूदा ने यीशु मसीह को धोखा दिया. Peter denied Christ. पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया. Judas never returned. यहूदा कभी वापस लौट के नहीं आया. Peter was restored. पतरस को पुनः परमेश्वर ने स्थापित किया. क्यों? Because he was a child of God. क्योंकि वो परमेश्वर का संतान था. Because he was loved of God. क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा प्रेम किया गया था. And if you're a child of God, अगर आप परमेश्वर के संतान हैं, even if you deny the Lord, और यदि आप प्रभु को इनकार करेंगे, और यदि आप हट जाएंगे, fall out of the way, चाहे आप रास्ते से गिर जाएंगे, if you are loved of God, अगर आप परमेश्वर द्वारा प्रेम किए गए, he will discipline you, तो वो आपको अनुशासित करेगा, आपको सही करेगा, he will restore you, लेकिन आपको पुनः स्थापित भी करेगा वो. John Mark. Marcus. Remember him? याद है आपको वो कौन था? He went with Paul and Barnabas on the first missionary trip. और वो पौलुस के साथ और बर्नबास के साथ पहली मिशनरी यात्रा में गया. And what happened to him? और फिर क्या हुआ? Things began to get difficult and he turned around and he deserted them and he went back home. और स्थिति मुश्किल होने लगी और उसने उनको त्याग दिया और छोड़ करके घर वापस चला गया. Then they were taking a second trip and Barnabas wanted to take Mark but Paul did not want to take him. और फिर जब वो लोग दूसरी बार यात्रा में जा रहे थे और बर्नबास अपने साथ मरकुस को लेना चाहता था, लेकिन मना कर दिया. And they had a big argument and a big division. बर्नबास और पौलुस के बीच में मतभेद हुआ और बहुत बवाल हुआ. But in the end, what happened to Mark? और फिर अंत में क्या हुआ मरकुस को? 2 Timothy chapter 4. और दूसरा तीमोथियुस के चौथे अध्याय में अगर आप देखते हैं. What did Paul say? पौलुस क्या कहता है वहाँ? Everyone has deserted me. सबने मुझे त्याग दिया, छोड़ दिया. No one is with me. मेरे साथ कोई नहीं है. Then what did he say? लेकिन फिर यहाँ पे क्या कहता है दूसरे तीमोथियुस के चौथे अध्याय में? Send Mark to me. कहता मेरे पास मरकुस को भेज दो. Why? क्यों? Because he is very useful for me. क्यों? क्योंकि सेवा कार के लिए वो मेरे लिए उपयोगी है. What happened to Mark? क्या हो गया था मरकुस को? He temporarily fell away. कुछ समय के लिए वो गिर पड़ा. But he was restored. लेकिन उसको पुनः स्थापित किया गया. क्यों? He was a child of God. क्योंकि वो परमेश्वर के संतान था. He was born of the Spirit of God. परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा उसका जन्म हुआ. Another young man. एक और दूसरा व्यक्ति था. 2 Timothy chapter 4. दूसरा तीमोथियुस चौथा अध्याय. His name was Demas. उसका नाम है Demas. You remember Demas? Demas.
Demas.
He followed Paul all the way.
और वो पौलुस के साथ साथ चलता था.
He was with him all the way until the end.
और वो पौलुस के साथ चलता रहा अंत तक की.
And then what happened to him?
और फिर अंत में क्या हो गया?
He left Paul.
उसने पौलुस छोड़ दिया.
He turned back.
वो हट गया वापस.
He denied the faith.
उसने विश्वास छोड़ दिया.
He loved the world.
उसने संसार से प्रेम किया.
He forsook Christ.
और उसने यीशु मसीह को छोड़ दिया.
One man turned away in the very beginning.
एक आदमी आरंभ में पलट गया.
But he was restored in the end.
लेकिन मरकुस को अंत में पुनः स्थापित कर दिया
गया. Another young man went all the way to the end.
और लेकिन दूसरा व्यक्ति देमास जो है अंत तक ही चलता चला गया. लेकिन अंत में जाके वो पलट गया.
Which one was truly saved?
कौन है इन दोनों में से जो वास्तविक रीति से बचाया गया है?
Both. Is that what he said?
No, first.
First, okay. Listen carefully.
ध्यान से इस बात को.
When God justifies a man,
जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को धर्मी ठहराता है,
he gives him a new status, a new legal status.
तो परमेश्वर उसको एक नई वैधानिक अवस्था देता
है. He gives him a new legal record.
और उसके एक नया वैधानिक हिसाब किताब देता
है. He cancels the debt and the penalty of sin.
और परमेश्वर उसके जो पापों का जो ऋण है और जो दंड है उसको हटा देता है.
But he also gives him a new nature.
और उसके साथ साथ परमेश्वर उसको नया स्वभाव भी देता है.
And he begins to grow.
और फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है.
Do you understand the difference between these two things?
और क्या आप समझते हैं इन दोनों बातों के बीच में फर्क को समझ रहे हैं, भिन्नता को समझ रहे हैं आप?
In your responsibility to preach to your people and to preach to those that are lost, you must be very clear.
और आपकी जिम्मेदारी है उन लोगों के बीच में जो लोग खोए हुए हैं और जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं उनके बीच में फर्क को बताना.
So why does the Hindu person worship the idols?
क्यों करके एक हिंदू व्यक्ति मूर्तियों की पूजा करता है, आराधना करता है?
What's their purpose?
क्या उद्देश्य है उसका आराधना करने का, मूर्तियों का क्या करना चाह रहा है वो? कुछ पाना चाहता है?
Do what?
Wants to get something out of it.
To get a benefit.
कोई फायदा चाहता है उससे.
You make an offering.
आप कुछ चढ़ावा चढ़ाएंगे.
You go to a festival.
आप एक त्योहार
में जाएंगे. You worship an idol.
आप एक मूर्ति की आराधना करेंगे.
You will receive a benefit.
तो आपको कुछ फायदा होगा उससे.
That's not the gospel.
ये सुसमाचार नहीं है.
The gospel is this.
लेकिन सुसमाचार तो ये है.
There's nothing you can do to get forgiveness of sins or benefit from God.
और ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते कि आप परमेश्वर से किसी तरह से कोई फायदा पा लें. कुछ भी नहीं कर सकते.
Free gift.
लेकिन परमेश्वर से फायदा जो भी मिलेगा वो मुफ्त में
दान.
यीशु मसीह के द्वारा जो प्रभु है.
And you must believe in Christ.
और आपको यीशु मसीह पे विश्वास करना.
And
वो मुफ्त में दान होता है, मुफ्त में.
Justify you freely and completely.
और वो आपको संपूर्णता से पूरी तरह से मुफ्त में धर्मी ठहराएगा. यही
है दान. He will also give you new life.
और साथ ही साथ में वो आपको एक नया जीवन भी दे देगा.
If a man says this,
अगर कोई व्यक्ति ये कहता है,
I've been justified,
मेरा तो धर्मी ठहरा गया,
my sins are forgiven,
मेरे पाप क्षमा हो गए,
I've been baptized,
मेरा तो बपतिस्मा हो गया,
I'm just not really living for the Lord.
मैं सिर्फ प्रभु के लिए नहीं जी पा रहा हूं.
What would you say to that man?
तो कोई व्यक्ति कहे मेरा मैं धर्मी ठहरा दिया गया हूं लेकिन मैं प्रभु के लिए जी नहीं पा रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे उस व्यक्ति से? हाँ, धर्मी ठहरा दिया गया हूं लेकिन मैं जी नहीं पा रहा हूं प्रभु के लिए, तो क्या कहेंगे आप उसे? कोशिश करना चाहिए, विश्वास नहीं है, उत्साहित करना चाहिए. शैलो कन्वर्जन हुआ था, ठीक है, उथला हृदय परिवर्तन हुआ था, ठीक है. हाँ जी,
यू नीड टू बी एबल टू गिव अ क्लियर आंसर टू दोज काइंड ऑफ पीपल.
उस तरह के लोगों को आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि आप स्पष्ट उत्तर दें उनको.
बट रिमेंबर दिस,
याद रखिए इस बात को,
सैंक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ.
पवित्रीकरण वृद्धि की, परिपक्वता की एक प्रक्रिया है.
यू डोंट एक्सपेक्ट ए लिटिल बेबी टू बी एबल टू गो टू कॉलेज.
आप ये नहीं आशा करते हैं कि कोई छोटा बच्चा कॉलेज चला जाए. आशा करते हैं कि आप छोटे बच्चे से कॉलेज जाने के लिए?
And you don't expect a young Christian to know and understand everything.
आप ये नहीं आशा कर सकते एक एक नवजात मसीही से कि वो हर एक बात को समझे और जाने.
Sometimes it takes time to determine who is truly a Christian.
कभी-कभी समय लगता है जानने के लिए कि कौन है वास्तविक मसीह, सच्चा विश्वास किया उन्होंने कि नहीं किया, पश्चाताप किया कि नहीं.
You need to continue to study and to understand and to be able to clearly preach the difference and the relationship between these two things.
इन दोनों चीजों के बीच में आपको नियमित तौर से प्रार्थना करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए. ठीक है? You can turn it on if you want to.
Are we running out of time?
समय कम.
So we'll save our question on the order of salvation answer until later.
उद्धार की प्रक्रिया के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे.
Do you still have your test with your name and your location on it?
तो जो आप लोग ने अपनी परीक्षाएं लिखी थी वो आपके पास है अभी वो उत्तर कॉपी, आपके नाम और आपकी जगह के लिखा हुआ उस पे?
The first test.
पहला जो परीक्षा ली थी आपने कल, है कि नहीं आपके पास?
Well, I want you to fold them together, pass them into the aisle, and then pass them, and then these men in the back will pick them up.
तो आप लोग एक दूसरे को दे दीजिए कॉपियां, वहां से इधर देना शुरू कर दिए तो फिर यहां से पीछे जाएंगी, कोई जन उठा लेगा.
Very quickly.
जल्दी जल्दी अपने उन पेपर को निकाल लीजिए और नाम लिख करके, जगह लिख करके और एक तरफ देना शुरू कर दीजिए. तो डायरी फाड़ दीजिए, मतलब उस पेज को फाड़ दीजिए. डायरी बंद नहीं, उस पेज को फाड़ दीजिए. आप अपने बाएं हाथ पे देते चले, फिर सबसे किनारे आ जाएंगे. अपने बाएं हाथ पे देना शुरू करिए. आप बाएं हाथ पे देते जाइए, आप दाएं हाथ पे देते, फाड़ के निकाल दीजिए पेपर, चिंता मत करिए, फाड़ के निकाल दीजिए. फाड़ करके जितना लिखा है उतना काफी है, चिंता मत करिए, और मत लिखिए. असली नाम लिखिएगा, अपना नकली नाम मत लिखिएगा.
And here's what we will do.
और अब हम लोग ये काम करेंगे.
We will grade the papers.
हम आपको अंक देंगे.
And we will put all the grades here on the wall.
और आप सबके नाम सामने लिख करके और आपको जो जो नंबर मिले वहां लिख देंगे सबके सामने.
And if you made under 70%, you'll not be able to eat supper tonight.
और अगर आपको 70% से कम मिलेगा तो आपको रात का खाना नहीं मिलेगा.
Now, aren't we glad we're under grace and not under law?
आप क्या खुश हैं कि हम लोग अनुग्रह के अधीन हैं बजाय कि व्यवस्था के अधीन?
So of course we're teasing.
तो हम लोग मजाक कर
रहे हैं.
अच्छा भैया, अपने दाएं हाथ पे देना शुरू करें जल्दी जल्दी, इतना मुश्किल काम नहीं है. दाएं हाथ पे सब लोग दीजिए, सब लोग जल्दी. आप दाएं हाथ पे दीजिए, आप बाएं हाथ पे दीजिए.
And then get
जल्दी 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 बाएं हाथ पे. अरिंदर, अरिंदर तुम खड़े हो, जमा कर लो इन लोग से, जल्दी जमा कर लिए. अर्पण, अर्पण खड़े होकर जल्दी जमा कर लो यहाँ पे. अंशुमन भाई जल्दी जमा कर लीजिए सबसे खड़ा से, जल्दी जल्दी.
And then I want you to get out another sheet of paper and put your name and address on it.
जल्दी 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 रामेंद्र जल्दी ले लो सबसे जल्दी ले. अब एक और काम करिए, इतना मुश्किल काम नहीं है, काहे परेशान है, जितना लिखा है उतना दे दीजिए, काफी है, बहुत है, चिंता मत करिए, खाना मिलेगा आपको, ज्यादा मिलेगा, चिंता मत करिए, लेकिन दे दीजिए, बेईमानी मत करिएगा, चालूपना मत करिएगा, प्रभु जी देख रहे हैं.
All right, I will write down the questions for you.
Okay. एक और पन्ना निकाल लीजिए आप लोग. अच्छा, किसने नहीं दिया अपने एग्जाम के पेपर, बताइए हमको जल्दी से. सबने दे दी कि नहीं दे दिया? जल्दी दी अखिलेश, जल्दी जल्दी दी, जल्दी दीजिए. उधर आ रहे थे, देखो पीछे कुछ लोग हैं, कुछ लोग वहां, सबने दे दिया, सबने जल्दी ले लो, जल्दी फाड़ो, जल्दी फाड़िए, फाड़िए, खटाखट फाड़िए, खटाखट फाड़ी दीजिए. अरे दीजिए दीजिए बाबा जी, फाड़िए दीजिए, फाड़ो और देव, फाड़ी 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 दीजिए. अरे फाड़िए, आप नहीं फाड़ रहे तो फाड़ पा रहे, कोई और फाड़ देगा आपके लिए. फाड़ना कुछ दिल दर्द हो रहा है क्या? वो
दिस इज द सेकंड,
कीजिए खींचो,
सेकंड एग्जाम.
हाँ कीजिए कीजिए, वो अंकल से ले लो, अंकल जी से, अंकल जी से लो. हाँ उनके लिए फाड़ दो, कॉपी फाड़ दो उनकी, खराक से खराक से, मतलब कॉपी के पेज वाला, पूरी नहीं, पूरी कॉपी नहीं.
This is an ordeal, just kidding.
सबने दे, किसने नहीं दिया अभी तक, किसने किसने छूटी है, किसका छूटी है? अगल बगल वाले ईमानदार से बताइए किसका छूटी है. सबने दे दिया, सबने दे दिया कि नहीं दे दिया, सबने दे दिया कि नहीं दिया? हमें सबके नाम मालूम है और जिसके नंबर नहीं, जिसके पेपर नहीं होगा हमें पता चल जाएगा. वो देखिए उधर, वो देखिए छिपा के बैठे, वो देखे और किसी छिपा के रखा, किसी और ने छिपा के रखा है? सबने दे दिया कि नहीं दे दिया? आपने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, कहा नहीं दिए है? लिखा है कि नहीं लिखा है? कुछ लिखा है कि नहीं लिखा? नाम लिखा है अपने कि नहीं लिखा है? हाँ हाँ ना, फाड़ के दीजिए भाई जल्दी भाई, इनकी अर्पण जल्दी कॉपी ले फाड़ो, जल्दी फाड़ो, नाम लिखा है बस दे दिए, फाड़िए देखिए। अरे पूछो ना उनसे, पूछो नहीं, कॉपी उठाओ फाड़ो पेज, पूछो ना, ये सब नहीं है। हाँ बस बढ़िया, जाओ दे दो। और किसका बाकी है? किसने नहीं दिया? सबने दे दिया। उधर सैमसन भाई दे दिया? सबने दे दिया। बाकी हो गया, बाबा जी दे दिया, अंकल जी दे दिया, कोई और तो नहीं बचा? शिवलाल भैया दिया नहीं दिया? बेमानी मत करिएगा, दे दिया। अच्छा ठीक है, प्रेम भाई दिया नहीं दिया? छिपा रहे नहीं है? तो आप बगल में छिपा रहे हैं, तुमने दिया? दिया, दे दिया नहीं दिया? अच्छा ठीक है, अब एक और काम करिए, अब नया पन्ना खोलिए, जल्दी से खोलिए नया पन्ना। बहुत मुश्किल काम नहीं दे रहे हैं, बहुत आसान काम दे रहे हैं, नया पन्ना। अब उसके ऊपर अपना नाम लिखिए और अपना जगह का नाम लिखिए, खटाक से अपना नाम और अपनी जगह का नाम। यह है परीक्षा नंबर दो,
फर्स्ट क्वेश्चन,
परीक्षा नंबर दो, पहला प्रश्न,
व्हाट इज जस्टिफिकेशन?
प्रश्न नंबर दो, नहीं प्रश्न नंबर एक, परीक्षा नंबर दो। अब यह प्रश्न का आप उत्तर नहीं दे पाएंगे तो जीवन में शायद आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे।
जस्टिफिकेशन हैज टू पार्ट्स।
धर्मी ठहराया जाना क्या होता है?
टेल मी व्हाट दोस टू पार्ट्स आर।
धर्मी ठहराए जाने के दो हिस्से हैं, हमें वो दो हिस्से बताइए।
And then tell me what is the relationship of Jesus' life and death to justification?
धर्मी ठहराए जाना हो जाएगा उसके बाद। धर्मी ठहराए जाना क्या है? पहली बात, धर्मी ठहराए जाना क्या है, उसके दो हिस्से क्या है? दो हिस्से, धर्मी ठहराए जाने के दो हिस्से क्या है? यू कैन शो इट। धर्मी ठहराने के दो हिस्से क्या है और उसका उसका मसीही जीवन से, मसीह के जीवन और मृत्यु से क्या लेना देना है? धर्मी ठहराए जाने का यीशु मसीह के जीवन और मृत्यु से क्या लेना देना है?
नंबर टू,
पहला प्रश्न, धर्मी ठहराया जाना क्या, उसके दो हिस्से बताइए, फिर यीशु मसीह की मृत्यु और जीवन का धर्मी ठहराए जाने से क्या लेना देना है?
And I want one clear, one or two very clear, simple sentence explanation.
हम आपसे बहुत लंबी कहानी नहीं चाहते हैं, खाली एक या दो या तीन बहुत ज्यादा लाइन में स्पष्ट समझाइए, स्पष्टता से समझाइए।
Usually the more a man tries to say, it indicates the less he knows.
अक्सर क्या होता है, जब आदमी ज्यादा बोलता है तो मतलब यह है कि उसको कम मालूम है। तो कम लिखिए, लेकिन स्पष्टता के साथ लिखिए, दो या तीन लाइन में हमको बता दीजिए, सफाई के साथ, क्या पूछ रहे हैं हम।
नंबर टू,
दूसरा प्रश्न,
व्हाट डज इट मीन टू बी इन क्राइस्ट?
दूसरा प्रश्न, ये बहुत आसान है, मसीह में होने का मतलब क्या है?
Yesterday we asked the question, what does it mean to be in Adam? Today we're asking, what does it mean to be in Christ?
कल हमने पूछा था आदम में होने का मतलब क्या है, आज हम आपसे पूछ रहे हैं मसीह में होने का मतलब क्या है?
And again, we are in Christ, united to Christ in two ways.
और हम मसीह से जुड़े हुए हैं दो तरीकों से।
Tell me what those two ways are and give me at least one verse for each.
और वे दो तरीके बताइए, हम कैसे मसीह से जुड़े हैं, मसीह में हैं दो तरीकों में, और हमको एक एक पद बताइए उन दोनों तरीकों के लिए।
There are three great legal transactions in the Bible.
और बाइबल में तीन महान वैधानिक आदान प्रदान हैं या ट्रांजैक्शन है, खरीद फरोख्त है।
What we mean is that something that someone has done is transferred, legally transferred to another person's record.
मतलब कहने का मतलब यह है कि किसी ने कोई काम किया है, लेकिन वो जो काम उन्होंने किया है वो वैधानिक कानूनी तौर पे वो कार्य किसी और के ऊपर हस्तांतरित कर दिया गया, किसी और के खाते में डाल दिया गया है। Major, legal.
Now let's don't give any answers yet.
Transactions. लेन देन, खरीद फरोख्त, खरीद फरोख्त नहीं, हिसाब किताब पता नहीं, ट्रांजैक्शन मतलब नहीं मालूम। तीसरा प्रश्न, 3 major transactions, legal transaction. Transaction.
Number 4.
Tisra prashn, third question, they want it to be more clear.
Well,
they want more clarification on the third question. I don't know. Imputation.
Yeah, but we don't have a word.
तीन ऐसी बातें वैधानिक कार्य बताइए.
What's your word in Romans 4 you said yesterday?
Credit, गिना गया. तीन ऐसी बातें हैं जो वैधानिक तौर पे, जो काम किसी और ने किया, लेकिन किसी काम किसी और ने किए हैं, लेकिन किसी और के खाते में उसको गिना जा रहा है, माना जा रहा है. तीन बातें बताइए, तीन चीजें, तीन घटनाएं, तीन घटनाएं, तीन खरीद फरोख्त, तीन व्यवहार, या तीन कार्य, या तीन लेन देन, या तीन मामले, या तीन सौदे. हमें तीन ऐसी बातें बताइए बाइबल में जो करा किसी और ने है, लेकिन फायदा किसी और को मिल रहा है, या नुकसान और फायदा या नुकसान जो भी है, करा किसी और ने लेकिन सर पे किसी और के मर दिया जा रहा है. ठीक है, चाहे अच्छाई के लिए चाहे भलाई के लिए. तीन बातें, तीन घटनाएं, तीन तरीके, तीन चीजें.
नंबर 4,
ये था तीसरा प्रश्न. अब चौथे प्रश्न है.
Where is number 3?
चौथे प्रश्न है.
You don't have number 3 up there yet, does it?
They're writing it.
Okay.
But I've already told them. हां जी, चाहे फायदे की चाहे नुकसान की हमें नहीं मालूम, आप हमको बताइए. तीन बातें हो सकती हैं मुख्यतः, मूल रूप से ये हो रहा है, कर कोई और रहा है, फायदा या नुकसान किसी और को हो रहा है, बस इतनी बात है. ठीक है, तीन ऐसी बातें जो करी किसी और ने है, या जिनका लाभ या नुकसान कोई और उठा, जरूरी नहीं लाभ हो, लाभ अथवा नुकसान, लाभ अथवा हानि, लाभ अथवा हानि. ठीक है, लाभ स्लैश हानि. हम अब हम नहीं बताएंगे क्या. तीन बातें, तीन तरीके से किसी और ने कुछ किया है, किसी और के खाते में गिना जा रहा है. ठीक है, समझिए कि नहीं समझिए. अब आप आइडिया समझिए कि नहीं, विचार समझिए नहीं है. किया किसी और ने, गिना किसी और के हिसाब में जा रहा है. करे कोई मरे कोई, करे कोई भरे कोई, करे कोई फायदा कोई उठाए, करे कोई नुकसान कोई उठाए. समझिए कि नहीं समझे. कोई चाहे नुकसान उठाए, चाहे फायदा उठा रहे हैं, चाहे भला उठा रहे हैं, जो भी है, इन तीन बातों को, तीन तरह की चीजों को हम आप बताए, तीन तीन घटनाएं, या तीन जन, या तीन बातें हो रही हैं, उनको बताइए. बहुत लंबा प्रश्न था वो.
नंबर 4,
चौथी बात.
व्हाट इज द बिलीवर्स रिलेशनशिप टू द लॉ ऑफ गॉड.
एक विश्वासी का परमेश्वर की व्यवस्था से क्या संबंध है? एक विश्वासी का परमेश्वर की व्यवस्था से क्या संबंध है?
Yesterday we talked about the non-believer's relationship to the law.
कल हमने बात किया था एक गैर विश्वासी का परमेश्वर की व्यवस्था से क्या संबंध है. आज हम आपसे पूछ रहे हैं एक विश्वासी का परमेश्वर की व्यवस्था से क्या संबंध है.
नंबर 5,
पांचवी बात.
We mentioned 3 different kinds or states of sanctification. What are they?
हमने पवित्रीकरण की तीन स्थितियों के बारे में बात किया था, तीन तरीके या तीन चरणों के बारे में बात किया था. पवित्रीकरण की तीन चरणों को बताइए, पवित्रीकरण की तीन स्थितियों को बताइए. 3 स्टेजेस ऑफ सैंक्टिफिकेशन. पवित्रीकरण की तीन चरणों को, स्थितियों को बताइए.
I want you to show me one verse for each.
और उन तीनों स्थितियों चरणों के बारे में एक एक पद हमको बताइए. पवित्रीकरण की तीन स्थितियां, तीन चरण.
And your bonus question.
और अब पांचवा प्रश्न बाद छठा प्रश्न, जो कि आपके लिए बोनस है, एक और मुफ्त में, सेहत मेत में. पवित्रकरण के तीन चरणों या तीन स्थितियों या तीन बातों को बताइए. तीन चरण स्थिति, ठीक है, को बताइए. और उनके लिए, इन तीनों चरणों के लिए एक एक पद दीजिए. एक एक पद देना है उन तीनों चरणों के लिए. ठीक है, तो तीन चरण है पवित्रीकरण में, हो सकता है 4, 5, 6 हो सकती है. आप कम से कम 3 बताइए. ठीक है, लेकिन उन तीन के लिए आप एक एक पद बताइए.
All right, here's your bonus question.
यहां पे आपके लिए मुफ्त में एक और प्रश्न है.
Write this verse down.
इस पद को लिख लीजिए.
Revelation chapter 3 verse 20.
प्रकाशित वाक्य उसका तीसरा अध्याय उसका 20 पद.
I want you to give me its proper interpretation and its context, number 1, and then I want you to tell me whether it's correct to use this verse in preaching the gospel.
मैं चाहता हूं प्रकाशित वाक उसका तीसरा अध्याय उसके 20 पद का आप व्याख्या मुझे उसके सही संदर्भ में बताइए. पहली बार प्रकाशित वाक इसका तीसरा अध्याय उसके 20 पद की व्याख्या उसके सही संदर्भ में हमको बताइए. दूसरी बात, क्या हम प्रकाशित वाक के तीसरे अध्याय के 20 पद को सुसमाचार प्रचार के कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो दो प्रश्न है. पहला प्रश्न, प्रकाशित वाक इसका तीसरा अध्याय उसके 20 पद को आप हमें सही संदर्भ में होकर के उसकी व्याख्या करके बताइए. दूसरी बात, क्या प्रकाशित वाक्य से तीसरे अध्याय के 20 पद को हम सुसमाचार प्रचार के कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं?
Or we have 30 minutes, 15 minutes you study alone, 15 minutes you talk with one another.
अब हमारे पास 30 मिनट है. 30 मिनट में 15 मिनट आप अकेले अपने आप सोचिए इन प्रश्नों के बारे में, अध्ययन करिए. फिर उसके बाद 15 मिनट आप अपने अगल बगल में जो लोग बैठे हैं उनसे बातचीत करिए इस प्रश्न के बारे में.